नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान नवाचार, सहयोग और स्थिरता प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। वे आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लोगो, विषय और वेबसाइट के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान भारत वैश्विक कल्याण के लिए ब्रिक्स देशों की क्षमता को एकजुट करने का प्रयास करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत इस सम्मेलन में मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारी अध्यक्षता में सम्मेलन की विषय वस्तु लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और टिकाऊपन पर आधारित है। ये विषय वस्तु ब्रिक्स सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर संतुलित और समावेशी तरीके से साझा चुनौतियों से निपटने के विश्वास को दर्शाती है।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण था। इसमें कार्रवाई करने और जवाब देने की पूरी आजादी थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जाएगा। वे आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
Our army base workshop which played a key role during Operation Sindoor.
हमारी सेना के बेस वर्कशॉप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसे मरम्मत सुविधा केंद्र से बदलकर शोध और विकास की सुविधा के साथ उत्पादन केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। हमें गर्व है कि भारतीय सेना के पास मौजूद 175 गोला बारूद श्रेणी में से 159 को पूरी तरह से स्वदेश में बनाया गया है, जो आंकड़ों में 90% से ज्यादा है। ये वास्तव में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सशक्त और सुरक्षित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया है। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने युवाओं से राष्ट्रवाद की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने और उद्देश्य को निर्धारित करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से कथित संबंधों के आरोप में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। इनमें एक सरकारी शिक्षक, एक प्रयोगशाला तकनीशियन, एक सहायक लाइनमैन, वन विभाग का एक कर्मचारी और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक ड्राइवर शामिल हैं। श्रीनगर की सेंट्रल जेल में बंद ड्राइवर की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान स्थित हैंडलर से लगातार संपर्क में था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, जो देश के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करता है। उन्होंने गांधीनगर जिले के पेठापुर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र की बायो सेफ्टी लेवल 4 जैव संरक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर की थी, जो 2024 के अंत तक बढ़कर 166 अरब डॉलर हो गई है। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई ऑटो योजना के अंतर्गत अब तक 13,61,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन फ्यूल सेल घटकों पर 13-18% और अन्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों पर 8-13% तक प्रोत्साहन दिया जाता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने अपने ही देश के आयुष शेट्टी को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जौली की जोड़ी ने थाईलैंड की ओर्निचा और सुकिता सुवाचाई को हराकर अगले दौर में जगह बनाई। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के छठे मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से नवी मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।